ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति, दिल से कहिए, मुस्कुरा के कहिए नमस्ते, गुड इवनिंग। कल का होमवर्क सब कर रहे हैं? जो जो कर रहे हैं हाथ ऊपर उठाइए। क्या बात है, आप बहुत अच्छे, टू गुड। इसको जारी रखिएगा, ठीक है। आज हमारा जो विषय है वो है एनहांसिंग इनर स्ट्रेंथ, आंतरिक शक्तियों को हम कैसे बढ़ाएं, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। वैसे आपको यहाँ अच्छा लग रहा है? पिछले दो दिन से आपको लग रहा है ये आपके जीवन में फायदा करेगा? ओके, अच्छा हुआ ना यहाँ पे आए, बहुत अच्छा। इसको कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ से बाहर जाते ही साथ सोडा वाटर हवा निकल जाएगा। सोडा वाटर होता ना, उसका ढक्कन निकालो तो उसका गैस बाहर। मैं आपको इनर स्ट्रेंथ के फायदे बताता हूँ, ठीक है। और आंतरिक शक्तियों का विकास का अर्थ ही है, हिंदी भाषा में उसको बहुत ही अच्छे शब्दों में उसका वर्णन किया है, और उसका अर्थ है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का इंग्लिश ट्रांसलेशन करिए सेल्फ। अब ये सेल्फ जो है ना, ये बहुत क्लियर नहीं है इंग्लिश में। वो किडनी भी हो सकता है, लीवर भी हो सकता है, मैं भी हो सकता है। एक बार रामकृष्ण परमहंस गुरुजी, रामकृष्ण परमहंस कोलकाता वेस्ट बंगाल में, उनके पास एक शिष्य आया और कहा, रामकृष्ण गुरुजी, मुझे पता चला है कि आपके पास देवी माँ दर्शन देने आती है। तो रामकृष्ण गुरुजी ने कहा, हाँ तो ठीक है, आती तो है। तो भक्त को पूछा, सो व्हाट? सो भक्त ने कहा, गुरुजी, अगली बार अगर काली माँ आपको दर्शन देने आए तो मेरे पास भी भेज दीजिए, मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। रामकृष्ण गुरुजी ने कहा, ठीक है, भेज देता हूँ, लेकिन पता बताओ तुम्हारा। तो उसने कहा, गुरुजी, मैं ना ज्यादा वक्त दुकान में बैठता हूँ, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, तो दुकान का एड्रेस दे देता हूँ, गली नंबर 700 चौक ये, गाला नंबर, इसमें आप भेज दीजिएगा देवी माँ को। रामकृष्ण गुरु जी ने कहा, वो तो तुम्हारा दुकान का पता है, तुम्हारा पता बताओ। तो उसने कहा, मेरा पता? घर का पता बता दिया। रामकृष्ण गुरु जी ने कहा, ये तो तुम्हारा घर का पता, तुम्हारा पता। उसने कहा, मेरा पता? तो गुरु जी ने कहा, ये तो तुम्हारा छाती का पता, तुम्हारा पता। फिर रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जिस दिन तुम्हें तुम्हारा पता पता चल जाएगा, उस दिन देवी माँ स्वतः आकर के तुम्हें दर्शन दे देगी। प्रॉब्लम ये है कि हमको हमारा पता ही नहीं है। तो मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, इस आत्मा का शक्ति वर्धन नहीं किया, इस आत्मा को अच्छा नहीं खिलाया, इस आत्मा को आराम नहीं दिया, इस आत्मा को पौष्टिक भोजन नहीं खिलाया, कुछ नहीं किया। इसीलिए आज मानसिक तौर पर हम सब बहुत ज्यादा कमजोर हैं। मैं जैसा चाहता हूं वैसा नहीं होता है ना, तो हमको तुरंत चढ़ जाता है ब्लड प्रेशर और गुस्सा। अच्छा, नहीं भी होता है तो इट इज ओके, फाइन, मेरा अपना तो कंट्रोलिंग पावर हो। और इसका इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने का एकमात्र तरीका है अपने मन को, आत्मा का एक भाग है मन जो विचार करता है, इंग्लिश में कहते हैं, कल मैंने आपको सत्य के बारे में बताया था, ये सत्य है, मैंने नहीं बनाया, ऐसे मैं आपको एक सत्य बताता हूं। इंग्लिश में कहते हैं, आई हू थॉट आई हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर माई लाइफ, मैं ये जो सोचता था कि मुझे अपने संपूर्ण जीवन पर संपूर्ण नियंत्रण है, रियलाइज्ड मेरे को अनुभूति हुआ कि आई हैव ओनली कंट्रोल ऑफ थ्री थिंग्स, मुझे सिर्फ जीवन में तीन चीजों तीन बातों पर ही नियंत्रण है। समझता था सारे जीवन पर नियंत्रण है, भविष्य पर, वर्तमान पर, पास्ट पर, लोगों पर, पत्नी पर, बच्चों पर, कारोबार पर, लेकिन पता चला तीन चीजों पर ही नियंत्रण और कंट्रोल है। क्या आप बता सकते, गेस कर सकते ये तीन चीजें क्या हो सकती है? हाँ जी, क्रोध पर नियंत्रण। इनका घर का पता बताना पड़ेगा भाई, जाकर एक बार चेक करते हैं इनके घर में कितने मजाक कर रहा हूं सर। हाँ, पता है वो तीन चीजें क्या है? नंबर वन है मेरे विचार, माय थॉट्स। नंबर टू द इमेजेस दैट दीज थॉट्स क्रिएट, माना मेरा दृष्टिकोण, मेरा देखने का रवैया, नजरिया, दृष्टिकोण, एटीट्यूड, प्रस्पेक्टिव। और तीसरा है इन दोनों के मिलन से, इन दोनों के कारो आपस के इंटरेक्शन से द रिजल्टेंट एक्शन दैट इज प्रोड्यूस आउट ऑफ दीज टू, अर्थात मेरे एक्शंस, मेरे कर्म। इसीलिए आपको जब से आप यहां पर आए हैं, शायद आपको एक बात तो पक्का हो गया होगा, कभी भी हम मिले तो हम क्या कहते हैं आपस में, ओम शांति। और गिरीश भाई तो तीन तीन बार करवा लेता है। हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में ओम शांति का ना उच्चारण पता है कैसे है? वो तीन सिलेबाई से बना हुआ है। ओम जो शब्द है वो है आ, ऊ और मा, शायद आपको बताया होगा, बताया, बहुत अच्छा। ओम शांति शांति शांति। आ से आचरण, मेरा आचरण, मेरे कर्म, माय एक्शंस। शांति का मतलब कुछ नहीं करना नहीं है, शांति का मतलब है संपूर्ण नियंत्रण। जब चाहूं, जैसे चाहूं, जहां चाहूं मेरा मन का विचार जाएगा, अपने मर्जी से नहीं जाएगा। मेरा उच्चारण, मेरे बोल, वो भी इन कंप्लीट कंट्रोल, एंड माय एक्शंस दैट आल्सो अंडर कंट्रोल। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है इन तीनों पर ही मेरा संपूर्ण नियंत्रण हो सकता है, बाकी तो सब आउट ऑफ कंट्रोल है। बट बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज ऐसा पाया गया कि इन तीनों पर ही मनुष्य का कुछ नियंत्रण नहीं है, बाकी सब चीजों पर वो नियंत्रण करने का अधिकार रखता है। फिल इन द ब्लैंक, शायद आपने, हमने कल भी किया था या नहीं किया था। दिल है, बाजू वाले का दिल या खुद का दिल की मानता नहीं। अरे मेरा दिल मानता नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन नहीं सुनता। और राजयोग मेडिटेशन एक ऐसा अभ्यास है जहां हम अपने मन को संपूर्ण नियंत्रण में लेकर आते हैं। एक बार ये नियंत्रण में आ गए, आपका डिसीशंस करेक्ट होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ठीक हो जाएगा, हम और आप हीरो बन जाएंगे अपने जीवन का, संपूर्ण नियंत्रण। आएंगी परिस्थितियां, तकलीफें, चैलेंजेस, घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। आपको एक उदाहरण देता हूं, अगर आपको लगता है कि राजयोग का अभ्यास हम कल से थोड़ा बहुत तो एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन इतना आसानी से मन लगता नहीं है जैसे आप लोगों का शायद लग जाता होगा। उदाहरण देता हूं, मैं एक बार मुंबई में गाड़ी चला के जा रहा था और मेरे घर में ना एक पेट एनिमल है, डॉग है, बड़ा, उसका जो हाइट है वो मेरे छाती तक आ जाता है और वो जब दोनों पांव ऊपर कर लेगा तो मेरे से भी ज्यादा उसकी हाइट हो जाती है, और थोड़ा हेल्दी है, भारी भरकम है। जर्मन शेपर्ड, आप जानते हैं जर्मन शेपर्ड, ठीक है, वेरी रॉयल ब्रीड ऑफ डॉग्स, और थोड़ा सा कलर भी बहुत ब्राइट है। अब मैं उसको अपने गाड़ी के ड्राइवर सीट के बाजू में मैं उसको बिठाकर एक बार मैं गाड़ी चलाकर मुंबई में जा रहा था। अब भारत के कुछ स्थानों पर जो ट्रैफिक है वो इतना डिसिप्लिन्ड नहीं है, थोड़ा सा आप तो जानते भी होंगे, ठीक है, कुछ शहरों का तो हाल इतना अच्छा है कि बस ऊपर से ओवरटेक करना ही बचा हुआ है, बाकी कहीं से भी व्यक्ति आ सकता है, ठीक है ना। हो सकता है आने वाले समय में मनुष्य ऊपर से भी ओवरटेक कर लेगा, वी नेवर नो दैट, बट कहीं से भी व्यक्ति आ सकता है, यू हैव टू बी विजिलेंट। अब जब मैं गाड़ी चला के जा रहा हूं मस्त आराम से, अचानक साइड से गाड़ी आ जाती है, मैं भी सडन ब्रेक लगाता हूं, वो भी सडन ब्रेक लगा देता है, लकीली टक्कर नहीं हुई। और ये जो जर्मन शेपर्ड है इसको मैं जब बहुत छोटा था तब से मैं लाया हूं, ठीक है, बहुत छोटू पपी था, और तब से मैंने उसको बड़े प्यार से हर बात की मैंने ट्रेनिंग दी। जब मैंने इसको ट्रेनिंग दी बड़े प्यार से, ठीक है, अब जब ये इतना बड़ा हो गया, प्रश्न पूछता हूं, जो भी मालिक गिरीश कहेगा ये डॉगी इसको मानेगा या नहीं? मानेगा ना। मुझे याद आता है अभी मैं कश्मीर में गया था डॉग यूनिट में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी डॉग यूनिट है या नहीं है पता नहीं, बट इंडियन आर्मी हैज अ डॉग यूनिट, एंड वहां पर हम शाम के वक्त थोड़ा सा ना मैं बैडमिंटन खेल रहा था बाहर, हमको भोजन भी बनाना था साथ में हम बैडमिंटन भी खेल रहे थे, तो एक जो जवान है वो एक मेरे को नाम नहीं पता कौन सा ब्रीड का था, वो उसको शाम को लेके जा रहा था, तो और मुझे जानवर बहुत पसंद है तो मैं तुरंत भागा उसके पास, लेकिन हमको इतना टाइम नहीं था, तो मैंने वो जवान को कहा इफ यू डोंट माइंड शाम को डिनर के बाद तुम इसको मेरे कमरे में लेकर आओगे क्या, मैं इसके साथ थोड़ा सा मस्ती करना। उन्होंने कहा जी साहब लेकर आते। उसका नाम वो जो जवान था उसने कहा उसका नाम वो कुत्ते के बच्चे को वो कहता था क्यूट, नाम ही इतना क्यूट था और इतना मोटू था, मेरे पास फोटो है मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास वीडियो भी है। अब वो डिनर के बाद जब आया वो जो जवान है ना उसको सावधान सावधान हो जाता था, विश्राम विश्राम, स्लीप तो स्लीप, खड़े हो जाओ, हर इंस्ट्रक्शन उसको मानता था। और उसने एक आईईडी को डिटेक्ट किया, वो आईईडी स्पेशलिस्ट है, ये जो डॉग है अलग अलग होता है उनका, ही इज एन आईईडी स्पेशलिस्ट डॉग, इसको अभी अवार्ड मिलने वाला है, इसने एक दो आईईडी को सूंघ कर स्निफ करके पता लगाया, सच्चा क्यूट था वो। अब मान लीजिए मेरा डॉगी का नाम भी क्यूट, ठीक है, मैं इसको एक साल पहले लाया था, एक साल तक मैंने इसको बड़े प्यार से पाला पोसा, हर प्रकार से इसकी देखरेख की। अब जब ये एक साल का इतना फेरोशियस फुल ब्लोन क्यूट बन गया, ये मालिक की बात मानेगा या नहीं मानेगा जो भी मैं इंस्ट्रक्शन कहूंगा? मानेगा कि नहीं? 100% मानेगा या कभी कभी मानेगा? हाँ जी, क्या चीज? उत्तेजित हो सकता है। मालिक जो इंस्ट्रक्शन दे वो मानेगा या नहीं? कौन कह रहा है छोटू, हाथ ऊपर उठाओ। तुम अपने मम्मी का हमेशा मानता है क्या? अच्छा देखो मम्मी बोलती है ये मानता नहीं है इसीलिए इसको यहां लेकर आई हूं, मेरी जैसे मान लेगा, ठीक है ना, मम्मी की नहीं मानता और गिरीश की क्यों मान ले। एनीवेज, विशेषता या अंतर मनुष्य बच्चे में और डॉग में इतना है, मनुष्य का बच्चा मानेगा माता पिता का इसमें गारंटी नहीं है, लेकिन कुत्ता जरूर मानेगा, ठीक है। अब मैं जब गाड़ी चला के जा रहा हूं मुंबई में, मैंने सडन ब्रेक अप्लाई किया क्योंकि बाजू से भी एक गाड़ी आया था, लकीली हमारी टक्कर नहीं हुई, बच गया, आई वॉज वेरी थैंकफुल, अरे भगवान थैंक यू। अब मैं अपना विंडो पे नीचे किया, अब मैंने सोचा वो जो सामने वाला जो गाड़ी है उसके ड्राइवर को मैं बोलता हूँ भाई साहब थैंक गॉड आपने भी सही टाइम पे ब्रेक लगा दिया, आप भी सुरक्षित मैं भी सुरक्षित, जो हुआ अच्छा हुआ, चलो आप अपनी यात्रा कंटिन्यू करो, आप आगे पहले गाड़ी निकालो मैं भी आगे पीछे निकालता हूं गाड़ी। ये कहने के लिए जैसे ही मैंने विंडो खिड़की का वो कांच नीचे किया उसने भी कांच नीचे किया, मुझे लगा अरे वाह ये भी मुझे धन्यवाद, अरे भाई साहब कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ, चलो आगे चलते। जैसे ही मैंने खिड़की का कांच नीचे किया तो मुझे शुद्ध महावाक्य सुनने को प्राप्त हुए। अब आप जानते भी हैं लोग कैसे, मैं सोच रहा था कि वो शायद धन्यवाद बोलेंगे कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई, उसने तो देव मुझे सुनाना शुरू कर दिया। इडियट, तेरे को गाड़ी चलाना आता है क्या, कहां कहां से नालायक पैदा हो जाते हैं सड़क में, गाड़ी का ड्राइविंग का सेंस नहीं है, मैंने अगर ब्रेक नहीं लगा होगा तो टक्कर मार देता। वो धड़धड़ धड़धड़ करके मेरे पे फायरिंग करने लगा। मैं थोड़ा चरज खा गया, अरे कुछ हुआ भी नहीं है, मैं उनको उल्टा थैंक यू बोलने वाला था कि कुछ हुआ नहीं भाई साहब यू कंटिन्यू, वो तो उल्टा मुझ पे बरस पड़े। अब मैं आई वॉज लिटिल शॉक्ड एंड सरप्राइज। जब मैं शॉक्ड एंड सरप्राइज था, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं। ये मेरा जो क्यूट है ना, ये मालिक को देख रहा था, डरपोक, वो इतना गाली दे रहा और तू यहां शांति से बैठा है। उसने वो वाले ड्राइवर को देखा और फिर मुझे भी देखा, उसको भी देखा, मुझे भी देखा। उसको एक बात पता चल गई, मेरे मालिक में दम नहीं है, ठीक है। अब उसने सोचा लेट मी टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, और बाजू वाले चेयर पे बैठते ही साथ पता है वो क्या कहता है, करता है, मालिक आप इशारा दो मैं नोच नाच के इसकी हालत खराब कर दूंगा। तो मेरे मालिक को डांटता है जिसने मुझे इतना प्यार किया। और जैसे ही ये अपने फुल उस एनर्जी में आता, बिकॉज द ओनर इज थ्रेटेंड एंड ही इज प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स द ओनर, वो करता है, पता है मैं क्या कहता हूं क्यूट को, क्यूट शांत बैठ, सवाल पूछूं मानेगा या नहीं मानेगा क्यूट 100%। उसको इस संसार के किसी व्यक्ति किसी परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है, उसका जो मालिक बोलेगा हां जी। अब आता है सिचुएशन नंबर टू। एक दिन क्यूट नहीं था मेरे साथ, मैं अकेले गाड़ी चला के जा रहा हूं, खाली है मेरे बाजू वाली से, ऐसी ही परिस्थिति, मैंने सडन ब्रेक लगाया, साइड से एक और गाड़ी आ गई, दोनों ने ब्रेक लगाया, कुछ हुआ भी नहीं, टक्कर वक्कर नहीं हुई। मैंने कहा धन्यवाद बोल देता हूं, विंडो आदत से मजबूर था, विंडो पे नीचे किया, मैंने सोचा इनको बोल दो भाई साहब आप आगे जाइए, अच्छा हुआ, भगवान आपका भला करे, आप सुरक्षित रहें। और जैसे ही मैंने कहने के लिए विंडो पे नीचे किया, फिर से इन्होंने गाली देना शुरू कर दिया। अब उस दिन मेरा क्यूट नहीं था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस दिन मेरा मन, और मैं अपने मन को कहता हूं हे मन शांत हो जा, सुनेगा मानेगा, और अगर हां तो इसका मतलब आपने अपने मन को अच्छी तरह पाला है, पोसा है, प्यार किया है, उसको नरिश किया है, उसको एनर्जाइज किया है। कहां किया, एक पेट एनिमल विल लिसन टू द ओनर, बट मेरे अंदर की इतनी अच्छी शक्ति जिससे मैं अपने जीवन को संवार सकता हूं या बिगाड़ सकता हूं, इस शक्ति को मैंने प्यार नहीं किया, उसको पालना नहीं दी, उसका ध्यान नहीं रखा, कितने दुर्भाग्य का ये जीवन है। और यही हम कहते हैं, कैन यू मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड, एंड इफ माई माइंड इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, then the chances of this mind to get irritated, frustrated, agitated ki aapko bada dukh se kehna pad raha hai. Main na NSG Manesar, Delhi ke Gurgaon ke beech mein Manesar karke ek jagah hai, NSG unit hai. Us NSG unit ka maine khabar, main ek bar flight mein travel kar raha tha Delhi mein, Times of India maine khola, main flight mein baith ke pad raha hu, aur एक दिन पहले का उसमें इंफॉर्मेशन है, एनएसजी यूनिट का कमांडो अपनी मानेसर कैंपस के अंदर अपनी पत्नी को गोली मारता है, उसकी बहन को गोली मारता है और खुद को गोली मारता है। किस्मत का खेल देखिए, द रिपोर्ट सेज द कमांडो डाइज, ये दोनों बच जाते हैं एंड क्रिटिकल हालत में, और एक वाइफ या बहन का मुझे याद नहीं है, एक की हालत ऐसी है कि उनके सिर पे गोली मारा, वो बच तो गई लेकिन उसका आने वाला क्वालिटी लाइफ कैसा होगा, शायद वो पैरालिटिक हो गई होगी या क्या है पता नहीं। ऐसा जीवन के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और शादी कर रहे हैं और जीवन को संवारने का प्रयास कर रहे हैं, मेरी लाइफ की डिपेंडेंसी हर दूसरे व्यक्ति पर, हमारा जीवन का सुख दुख कहां है, माय इनर चॉइसेस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्हाट हैपेंस अराउंड मी, मेरे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, वो किसी और की मर्जी से हो सकता है, उस पर मेरा नियंत्रण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति की मर्जी से चलना चाहिए। वो कौन है? मैं हूं। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, बस मेरे अंदर क्या चल रहा है उसका कंट्रोलिंग पावर किसी और के हाथ में है, स्वतंत्र नहीं हूं। सारा खेल रिमोट कंट्रोल का है। आजकल पता नहीं घरों में ऐसा होता है या नहीं होता है, लेकिन एक टाइम था जब घर का छोटा बच्चा जो है ना स्कूल से आता है, आते ही साथ जूता इधर, शर्ट उधर, साथ कपड़े उधर उधर डाल करके सीधे रिमोट कंट्रोल उठाता है, छोटा भीम जैसे मैंने कल कहा था, वो देखने शुरू करता है। उसकी मम्मी उसको बहुत देर से बोल रही है, बेटा हाथ पैर मुंह धोकर थोड़ा खाकर फिर टीवी देख। फिर मम्मी फाइनली उसको कहते, अच्छा राहुल बेटा कम से कम एक गिलास दूध तो पी के फिर तू चले जा, कुछ तो जाएगा इसके पेट में, खाना चलो थोड़ा देर के बाद खा ले। मम्मी बहुत फोर्स करती है तो छोटू जाता है दूध पीने के लिए किचन में, और पता है दूध पीता कैसे, धीरे धीरे आराम से, टाइम नहीं है छोटा भीम, और ग्लास उधर मम्मी बोलती बेबी प्लीज आराम से पीना फिर तुम जाके टीवी दो। वो जल्दी तुरंत खत्म करता है पूरा ग्लास ऑफ मिल्क इज ओवर, पी करके भागता है, और जैसे ही वापस ड्राइंग रूम में जाता है देखता है घर घर की कहानी शुरू हो गई, दीदी दीदी मैं देख रहा था ना, अब दीदी के हाथ में रिमोट कंट्रोल। मैं दीदी कहती है जाके होमवर्क कर, तेरा पेरेंट टीचर मीटिंग में मम्मी मेरे को भेजती है और पूरा मेरे को सुनना पड़ता है, तू तेरा जितना कंप्लेंट है, होमवर्क किया क्या तूने, पढ़ाई कंप्लीट किया क्या, नहीं ना, जा हाथ पैर मुंह धोया, खाना खाया क्या, लगाऊंगी तो खींच के पढ़। बड़े और छोटे में तो बड़ों का ही ऑर्डर माना जाता है। घर का दरवाजा बजता है, दीदी जाती है दरवाजा खोलने, वापस आकर देखती है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज थर्ड डे टेस्ट मैच। दीदी कहती भैया मैं अपना वो, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही देख रहा। भैया कहता वो कितना घटिया सीरियल है ना, उससे तो अच्छा क्रिकेट ही है, क्या तुम देखती रहती इतना बकवास सीरियल, क्रिकेट देखो कितना अच्छा करो, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे 50-50 बनाकर इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाएगा। तो पता है दीदी क्या कहती, कितना इडियट गेम है ना आपका, पता नहीं एक गेंद फेंकता है वो मारता है, ये कोई गेम है क्या। तो पता भैया क्या कहता है, तू मेरे को कुछ भी बोल दे अगर क्रिकेट के बारे में कुछ बोला ना तो छोड़ूंगा नहीं, उसकी जान है क्रिकेट। वो भैया का मोबाइल बजता है बेडरूम में, भैया भागता है, पता है अगर मोबाइल मम्मी पापा के हाथ में लग गया तो बहुत बड़ा समस्या खड़ी हो जाएगी। वो तो किसी को दिखाता तक नहीं अपना मोबाइल, 2-3 उसमें पासवर्ड सब सेट करके रखा है, मम्मी शुडंट पिक अप द कॉल, भागता है ओलंपिक रिकॉर्ड हाई जंप ट्रिपल जंप पोल वॉल्ट सबका तोड़ के, ठीक है ना, और तुरंत मोबाइल को उठाकर बात करता है जिससे भी, वापस आकर देखता है जी न्यूज चालू हो गया है। कौन आ गया, क्या बात है, याद है हिटलर। पापा वापस, और बेटा आकर पूछता पापा वो जरा स्कोर देख, पढ़ाई करता है क्या तू आजकल, 24 घंटे में 25 घंटे तो क्रिकेट देखता रहता, पढ़। आजकल है ना घर वाले बहुत स्मार्ट हो गए हैं, पता है क्या, बाथरूम भी जाना होता है ना तो रिमोट कंट्रोल को साथ लेके जाते, क्योंकि चैनल चेंज हो जाएगा, या फिर वो क्या बोलते रिमोट कंट्रोल को छिपा के रखते, और पूरे घर वाले बोलते रिमोट कंट्रोल कहाँ है, रिमोट कंट्रोल, और होता हम क्या, हमको क्या पता, ढूंढ लो जहां पर, अपना सीरियल या अपना एपिसोड खत्म होने तक तू ढूंढते रहे। हमको टेलीविजन चैनल को अपना रखने के लिए रिमोट कंट्रोल हाथ में होना जरूरी है दोस्तों, स्वयं के जीवन का रिमोट कंट्रोल। और ना हमने ये सीखा, ना हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये सिखा रहे हैं। ये है मन की शक्ति, मनोबल, आंतरिक शक्ति, थोड़ा तो समय निकालिए अपने जीवन का और देखना ये मन बुद्धि और हमारे जो कर्म है ये कैसे हमारे कंट्रोल के बाहर है। मान लीजिए इस संसार, चलो संसार छोड़ो, भारत का, मुझे नहीं पता मैंने आपको ये कल बताया नहीं बताया, भारत की सबसे महंगी गाड़ी बताया था कल नहीं, मान लीजिए 10 करोड़ की गाड़ी, उससे भी ज्यादा हो सकता है बट आई डोंट नो। मैं आज आपको भारत की सबसे महंगी गाड़ी 25 अगस्त 2019 के 4:50 पे हर एक भाई या बहन जो भी हैं आपको मैं 10 करोड़ की गाड़ी की चाबी हाथ में देता हूं, ठीक है? थोड़ा तो खुश हो जाइए, 10 करोड़ की गाड़ी प्राप्त करके भी देखो चेहरा, अरे सोच के भी तो खुश हुआ जा सकता है, आपका मन पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है मैं जानता हूं, ठीक है? हाँ जी, खाली चाबी, अरे कैसे बात कर रहे, भरोसा ही नहीं है इनका चाबी, अरे गाड़ी की चाबी, 10 करोड़ की गाड़ी की चाबी भी अगर मन में प्राप्त होगी थोड़ी तो खुशी हो ही सकती है। अच्छा, आप वो गाड़ी के मालिक, आप उसको पेट्रोल पंप लेके जाएंगे गैस स्टेशन में, कौन से वहां पे ना 3 क्वालिटी का पेट्रोल मिलता है, एक 200 रुपए पर लीटर एकदम रिफाइंड बहुत हाई फाई, एक जो नॉर्मल 70-80 रुपए वाला और एक तीसरा घासलेट केरोसिन और सब कचरा मिक्स करके 50 रुपए लीटर, कौन सा पेट्रोल भराएंगे? हाँ जी, 200 रुपए वाला, क्यों? अरे क्या बात कर रहे, इंजन खराब हो जाएगी, 10 करोड़ की गाड़ी और पेट्रोल एकदम थर्ड क्लास, ऐसे थोड़ी ना होता है, गाड़ी इतनी महंगी है, करेक्ट? घर में दाल रोटी के लाले पड़े होंगे लेकिन तब भी 200 रुपए पर लीटर ही भराएंगे, यस और नो? बहुत अच्छा, आप लोग एकदम करेक्ट हैं। आज से करीब 20 वर्ष पहले, लगभग 2 decades बैक, इस शरीर का मार्केट वैल्यू पता लगाया गया अमेरिका में। शरीर भी एक गाड़ी है, एक एक अंगों का मार्केट वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू पता लगाया गया। पता है इसकी कीमत, वो 20 साल पहले की बात बता रहा, अभी का नहीं है, इंडियन रुपीस में इसका कीमत 220 करोड़ रुपए। अभी तो कम से कम सचमुच में खुश हो जाइए ना, आपके गाड़ी का मूल्यांकन बता रहा हूं, घर जाते ही साथ ना ऐसे करके चलना, घर वाले बोलेंगे क्या हो गया आपकी चाल को, तो कहना 220 करोड़ की गाड़ी पे चल रहा हूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है ना, अब ये तो सत्य है, आप सत्य पर भी मुस्कुराते नहीं हो। अब कमाल की बात बताता हूं, मेरा मन, मेरा बुद्धि और मेरे संस्कार कहां है कंट्रोल, हे इंसान, 10 करोड़ की गाड़ी में कौन सा पेट्रोल, 200 रुपए का हाई क्वालिटी, इस 220 करोड़ की गाड़ी में पता है हम कैसे कैसे पेट्रोल भरते हैं? उदाहरण देता हूं, कितने रुपए की पेट्रोल, जो जो कह रहे हैं 5 रुपए की, आपको अनुभव है खाने का, एकदम करेक्ट बता रहे हैं, ठीक है? आप बताइए, मतलब बुद्धि काम करता है, 10 करोड़ की गाड़ी के लिए 200 रुपए का पेट्रोल ही भराएंगे, वहां हमारा विवेक बहुत जागृत है, वेरी हाइटेंड लेवल ऑफ अवेयरनेस टू डिसर्न व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू दिस बॉडी, आपको बड़े दुख से कहना पड़ रहा है मुझे, यहां पे केरला पुलिस, केरला पुलिस, पीपल फ्रॉम केरला पुलिस रेज योर हैंड, ओनली 2, ओके, अच्छा केरला पुलिस के 2 लोग हैं, थोड़ा सा इनको तकलीफ है, एक बार इनके लिए ताली बजाएंगे प्लीज फॉर केरला पुलिस, 2 good brothers, यू नो व्हाई, बिकॉज यू डोंट इवन अंडरस्टैंड हिंदी बट स्टिल यू आर सिटिंग हियर एंड लिसनिंग टू अस, हिंदी इनको थोड़ा समझने में तकलीफ है लेकिन फिर भी इतनी प्यार से सुन रहे, जब भाषा ही नहीं समझ में आए तो क्यों बैठे भैया 1-1.5 घंटा, इनका कमाल देखे कितना अच्छा है। लेकिन केरला पुलिस के जो भाई है ना, इनको इनके मध्य में मैं ये पूछना चाहता हूं, कितना गड़बड़ है। देखो भारत में, मैं भी केरला से ही हूं, हाँ मैं केरला का रहने वाला हूं, लेकिन मेरा जन्म और मैंने पढ़ाई सब नॉर्थ इंडिया में की है। मेरे पिताजी अभी भी केरला में रहते हैं, मैं बार बार फ्रीक्वेंटली जाता भी हूं। मैं आपको केरला स्टेट के बारे में कुछ बताता हूं। ब्रदर प्लीज टेल मी व्हाट आई एम सेइंग इज राइट एंड रॉन्ग, ओके? इफ आई से एनीथिंग रॉन्ग यू शुड से रॉन्ग, ओके? मैं जब ये ऐसे लेक्चर्स लेना शुरू किया तो मैं है ना नॉर्थ उत्तर भारत के लोगों को बड़े सीना तान करके बड़े गर्व से कहता था कि मैं केरला से हूं। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में केरला नंबर वन स्टेट है जिसमें 100% क्या बात है साक्षरता, 100% लिटरेट स्टेट अगर कोई है तो केरला। और फिर मुझे एक और बात पता चला, यूनाइटेड नेशंस का एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज का उन्होंने स्टडी किया था, केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पत्तनमतिट्टा डिस्ट्रिक्ट। वो डिस्ट्रिक्ट एट दैट टाइम, काफी साल पहले की बात है, यूज टू बोस्ट ऑफ 0% चाइल्ड मॉर्टेलिटी। वहां पर माताएं, गर्भवती माताएं बच्चों को जन्म के पहले और जन्म के बाद कैसे ध्यान से, प्री बर्थ एंड पोस्ट बर्थ दे हैव टू टेक केयर ऑफ द बेबी। एवरी मदर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पत्तनमतिट्टा वॉज अवेयर एंड 0% जन्म के दौरान बच्चे की मृत्यु नहीं होती थी। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन केरला। मैं ये बड़ा दिलेरी के साथ, बड़े उमंग उत्साह के साथ कहता था, ये दोनों बात किसके लिए अप्लाई होती है? केरल राज्य के लिए। तो मैं तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन हमारे गुजरात में है, महाराष्ट्र और गुजरात बॉर्डर पे, वहां मैं साइंटिस्ट के लिए कार्यक्रम कर रहा था। वहां पर एक मल्लू साइंटिस्ट बैठे हुए थे, मलयाली साइंटिस्ट, वो भी केरल राज्य के थे। उन्होंने मेरी बात सुनकर खुद अकेले खड़े होकर ताली बजा, बोला गिरीश थैंक यू, तुम केरल राज्य का कितनी प्रशंसा कर रहे हो। मैंने कहा धन्यवाद सर। उन्होंने कहा गिरीश भाई मैं आपको दो और विशेषता बता देता हूं केरला का जो आप जानते नहीं हो। मैंने कहा अरे वाह थैंक यू सर, फिर मैं चार बातें सुनाकर एकदम सीना तान करके बात करूंगा उत्तर भारत के लोगों को बताने के लिए। मैंने कहा सर जल्दी बताइए, जीवन भर ये चार विशेषताएं बताऊंगा। ब्रदर प्लीज टेल मी इफ आई एम रॉन्ग और राइट, ओके? वो साइंटिस्ट ने मुझे कहा केरला इज नंबर वन इन द होल ऑफ द कंट्री विथ मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ लिकर। केरला पुलिस, मुझे एक बात समझ ही नहीं आ रही है, 100% लिटरेसी और सबसे ज्यादा शराब, क्या डिसिप्लिन है, क्या सिंसियरिटी है। आपको फोटो दिखाऊंगा मैं, शराब की दुकान के सामने क्या लाइन है, बस स्टैंड पे धक्का मुक्की दिख जाएगा आपको, मंदिर मंदिर के दर्शन। आप केरला में रहे हैं ना, क्या ये देखिए डीएससी में रहे हैं, केरला में मंदिर के दर्शन में धक्का मुक्की आपको मिल जाएगा, सामान खरीदने के शॉपिंग मॉल में आपको धक्का मुक्की मिल जाएगा, लेकिन शराब की दुकान के सामने एक सिंगल लाइन। क्या कंट्रोलिंग पावर है, क्या डिसिप्लिन है, क्या अनुशासन है। आपकी आदत गई नहीं हर गलत बात पे ताली बजाने का, मैंने सोचा कम से कम एक दिन में कुछ तो सुधार होगा। फ्रेंड्स इट इज नॉट अबाउट केरला, क्योंकि मैं जब बचपन में ना, मेरी टीचर बताती थी शिक्षा के ऊपर क्या लिखो, एसे लिखो, भारत में अगर शिक्षा आ जाएगी तो सब सोशल इवल खत्म हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, महामारी खत्म हो जाएगी, अत्याचार अनाचार भ्रष्टाचार पापाचार सब खत्म हो जाएगा, शिक्षा 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 हम लिखते थे और हमको अच्छे मार्क्स मिलते थे। लेकिन जब ये बात पता चला तो सॉरी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, जानकारी और ज्ञान में बहुत अंतर है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ज्ञान का मतलब है शक्ति, नॉलेज इज पावर। मेरा छोटा बच्चा है ना स्कूल से आकर कहता है डैड सिगरेट स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ। मैंने कहा वेरी गुड, अच्छा सीख रहा कम से कम, बहुत मेहनत करके एडमिशन दिलाया इंटरनेशनल स्कूल में, एक साल का फीस 1.5 लाख रुपए है, 50,000 में मैंने आज से 20 साल पहले एमबीए कंप्लीट कर लिया था, ये छोटू फर्स्ट स्टैंडर्ड 1.5 लाख रुपए, कुछ तो फायदा हो रहा है, कुछ तो अच्छा सीख रहा है, 1.5 लाख वसूल तो हो रहा है। और कहता है पापा सिगरेट स्मोकिंग जो है ना, जो स्मोक है ना, इट इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर, उसको बोलते नहीं आ रहा है, लेकिन जो जो उसके मैडम ने सिखा टंग टंग तोते की तरह मेरे को सुना रहा है, उससे लंग कैंसर होगा पापा, उससे थ्रोट कैंसर हो जाएगा, वैसे तो हर व्यक्ति मरता है संसार में, लेकिन कैंसर वाला व्यक्ति मर मर के मरता है, दुखी होकर मरता है, मतलब परेशान होकर मरता है, उसको देखने वाले भी दुखी हो जाते हैं। मैंने कहा गुड बेबी कंटिन्यू, अच्छा कुछ तो 1.5 लाख। 2 घंटे के बाद हाथ में सिगरेट लेकर आकर मुझे कहता है पॉप पॉप, लेकिन सिगरेट पीता हूं। जानकारी और ज्ञान में बहुत अंतर है। इस संसार में जितने लोग तंबाकू खाते हैं ना, सबको पता है, पता है, जानकारी है। ज्ञान मतलब आज के बाद मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। वो ना सिगरेट स्मोकिंग से भी खतरनाक है। आज के बाद मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। ये है पावर, नॉलेज इज पावर। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा की शक्ति ने डिसाइड कर लिया है। और उसमें कितनी शक्ति है दोस्तों, आपको मैं बता नहीं सकता हूं। इसको हम लोगों ने एक्सप्लॉइट नहीं किया, इसको हम लोगों ने पॉलिश नहीं किया, इसको हमने टैप नहीं किया। हमारा पूरा आधार पता है क्या है? बाहुबल, बुद्धि बल, क्या बोलते हैं, क्वालिफिकेशन का बल, पोस्ट का बल, पोजीशन का बल, स्टेटस का बल। ये भी रखो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, आपके पास बहुत पैसा हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत पढ़ो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बहुत तरक्की करके अपने कंपनी के सीईओ बन जाओ, डायरेक्टर बन जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब करो, लेकिन जो चीज मिसिंग है उसको भी बढ़ाओ, वो है आत्मबल। थोड़ा इसके लिए भी टाइम दो, बच्चों को भी इसके लिए टाइम दो, नहीं तो बहुत तकलीफ है, हम इन बच्चों के कारण दुखी होने वाले। और ये बच्चे, पता है मैं कैसे बच्चे चाहता हूं? आपका बच्चा 10वीं बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट देख के घर में आए, और अगर आपका बच्चा ऐसा कर सकता है, ऐसा सोच सकता है, ऐसा बोल सकता है, ऐसा उसकी दृष्टिकोण हो सकती है, गारंटी मैं करता हूं, मैं आपको स्टैंप पेपर में लिख के देता हूं, यू आर अ वंडरफुल डैडी, यू आर अ ग्रेट मॉम, यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन। आपने जीवन को उसके यथार्थता के आधार से जी रहे हैं, उसका रिजल्ट है आपका बच्चा इस प्रकार बोल सकता है, देख सकता है, सोच सकता है, कर सकता है। 10वीं बोर्ड का रिजल्ट देखकर वापस घर में आए और टिंग टोंग बेल बजाता है, आप माता पिता बड़े, मैं माता पिता बड़े उत्सुकतावश दरवाजा खोलते हैं, और पता है क्या देखते हैं कि मेरा बेटा या बेटी, जो भी कह लो, मेरा बेटा या बेटी सामने खड़ी है, उसकी आंखों में चमक है, चेहरा खिला हुआ है, बॉडी लैंग्वेज एब्सोल्युटली पॉजिटिव है। ये देखते ही साथ मुझे डैडी को पता चल जाता है गुड न्यूज है, अच्छा ही समाचार होगा तो इतना बॉडी लैंग्वेज। मैंने कहा बेटी टेल मी व्हाट्स द गुड न्यूज, इंतजार कर रहा हूं, कितना बाप को खुशी होगी मेरी बच्ची अच्छे नंबरों में सफल हुई है। मेरी बेटी कहती है डैड फेल होकर आई हूं। फेल होकर तुम आई है, तेरी आंखों में चमक है, योर आईज आर ट्विंकलिंग, योर फेस इज ब्राइट, योर बॉडी लैंग्वेज इज एब्सोल्युटली पॉजिटिव आफ्टर फ्लंकिंग इन योर एग्जाम। पता है मेरी बेटी, आपकी बेटी अगर ऐसा कह सकती है, आपका बेटा अगर ऐसा कह सकता है, ये आपका कमाल है। और अगर आपका बेटा कहे डैडी फेल होकर आया हूं, वो सत्य है, सुसाइड नहीं करूंगा, डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, अपने कमरे में बैठ करके अंदर से चिटकनी लगाकर बिना ब्रश के बिना शेव किए अकेला मरूंगा नहीं, सारी दुनिया को गाली नहीं दूंगा, अपनी किस्मत को नहीं कोसूंगा, ईश्वर परमात्मा खुदा दोस्त अल्लाह ताला वाहेगुरु को गाली नहीं दूंगा, जिस दोस्त को मैंने ट्यूशन लिया, जिस दोस्त को मैंने हेल्प किया, जिस दोस्त को मैंने कंसेप्ट पढ़ाया, वो पास हो गया और बेल लटक गया, रोऊंगा नहीं। और पापा अगले वापस अगले साल अपने जूनियर्स के साथ बैठकर वापस 365 दिन बैठ के पढ़ने में इंसल्टेड फील नहीं करूंगा, अपमानित महसूस नहीं करूंगा। और डैडी समाज में, खानदान में, परिवार में, नजदीक या दूर के रिश्तेदार आपको अगर पूछेंगे ना आपका छोटे बेटे का रिजल्ट क्या हुआ, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर देना, मैं जवाब दूंगा, मुस्कुरा के छाती तान करके जवाब दूंगा। ये है मनोबल और आत्मविश्वास। और डैडी एक और चीज आपको बताना था, दोपहर का भोजन मेरी तरफ से पार्टी आपके लिए, बाहर जाके लंच करेंगे। हेलो, तू फेल होकर आया, उल्टा ज्ञान मुझे दे रहा है, ऊपर से तू मुझे आफ्टरनून लंच बाहर होटल में खिला रहा है, किस खुशी में? अगर आपका बेटा या बेटी ये कह सके तो मान के चलो आप जीवन के सबसे अच्छे सोल्जर हैं। भारत माँ के सोल्जर तो हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जीवन के ये निराशा, सुसाइड, फ्रस्ट्रेशन को भी आपने अपने बच्चों को सुरक्षित रखा है। आप जीवन के भी बहुत अच्छे कमांडो है, इन दुश्मनों से भी आपने अपने परिवार को बचा करके रख लिया है। और अगर आपका बेटा और बेटी ये कहे कि पापा दोपहर का लंच पार्टी में क्यों है पता है, ये पार्टी अभी है, सेलिब्रेशन अभी है, घटना एक साल के बाद घटेगी, एडवांस्ड पार्टी है। कौन सा एडवांस पार्टी? अगले साल दसवीं बोर्ड में पूरे कॉलेज में या फिर स्कूल में गोल्ड मेडल कमा के दिखाऊंगी, ये आत्मविश्वास मेरा है। और रोऊंगी नहीं, ढोंगी नहीं, गाली नहीं दूंगी, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगी, अपने गलती का दोषारोपण किसी और तीसरे व्यक्ति के सर में नहीं डालूंगी, फेस करो। ये तभी कर सकते हैं हमारे बच्चे जब हम ऐसे बने, जब हमारे स्वभाव में, हमारे बोल में, हमारे दृष्टिकोण में हमारी माँ और मेरे पापा ऐसे बने। कहाँ है जीवन फ्रेंड्स? और ये 100% हो सकता है। आपने आज हमारे आर्मी ऑफिसर्स का अनुभव सुना ना, उन्होंने प्रैक्टिकल उसी बैटलफील्ड में इस मेडिटेशन और आत्मविश्वास से क्या कुछ कमाल नहीं करके दिखाया। प्लीज अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहां से जाने के बाद मेडिटेशन का अभ्यास करिए। आप जिस क्षेत्र से आए, जिस शहर से आए, वहां हमारे से निशुल्क आपको एक रुपया खर्चा कर, खुशी का कीमत नहीं होता है, खुशी इनवैल्यूबल है, वो आपका और मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आपको मैं उदाहरण देता हूं, फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स मैन बिलीव्ड इट इज इम्पॉसिबल टू रन अ माइल इन लेस देन 4 मिनट्स। हजारों वर्षों तक मनुष्य का मानना था कि एक मनुष्य एक मील की दूरी 1.64 सम किलोमीटर्स 4 मिनट के अंदर हम दौड़ ही नहीं सकते, आपके अंदर है ही नहीं है वो शक्ति। अंटिल इन द ईयर 1956 एन एथलीट कॉल्ड एस रॉजर बैनिस्टर कंप्लीटेड द रेस इन एग्जैक्टली 3 मिनट्स 59 सेकेंड्स। उसका भी आप गूगल में सर्च करना, उसका वीडियो है। और जैसे ही उसने 3 मिनट 59 सेकेंड में उसने फिनिशिंग लाइन टच किया ना, ही क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये देख करके साइकोलॉजिस्ट, साइको एनालिस्ट, पीपल फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी वो दंग रह गए, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारा ये मानना है, हमने संशोधन किया है कि एक भी मनुष्य, हजारों साल तक ये मान्यता थी कि एक मील की दूरी 4 मिनट के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकती। उसका उसको कैसे कहते थे पता है? 4 मिनट अ माइल बैरियर, ऐसे ही था। दिस इज हाउ मैन इज मेड। एंड व्हेन ही कंप्लीटेड इन 3 मिनट 59 सेकेंड्स, ये सब आश्चर्यचकित हुए, ये सब गए रॉजर बैनिस्टर को पूछने के लिए, अरे तुमने कैसे कर दिया, हाउ कुड यू डू इट? और पता है क्या पता चला उनको? रॉजर बैनिस्टर ने बताया, अलोंग विथ फिजिकल एक्सरसाइजेस, अलोंग विथ फिजिकल ट्रेनिंग, जो मेहनत हमको करनी पड़ती है दौड़ने के लिए, वो सब करने के साथ साथ रॉजर बैनिस्टर ने कहा, आई यूज टू विजुअलाइज, मैं देखता था मन में आंख बंद करके, ऑन योर मार्क गेट, रियल में नहीं, वो बस सोच रहा है, मेरा सिर्फ 3 चीजों पर ही कंट्रोल है, मेरा मन, द इमेजेस एंड द एक्शन, उसका रिजल्ट एंड कर्म। वो सोचता था, देखता था, स्टेडियम के उसमें खड़ा हुआ है, भावक लोग खड़े हैं, ऑन योर मार्क गेट सेट, ठक द गन शॉट, एंड सब भाग रहे हैं और ये भी भाग रहा है, बस ये बैठ के विजुअलाइज कर रहा है। योग, योग माना ध्यान पूर्वक किसी के साथ अपने मन बुद्धि को जोड़ना, 2 और 2 का योग 4, घर में शादी किसी की होती है तो बच्चा और लड़का और लड़की का जन्म कुंडली का योग मैच करते, पंडित कहता है योग ठीक नहीं है, शादी नहीं हो सकती, जन्म पत्री मैच नहीं कर रही है। योग खुद का, खुद के साथ योग, मुजात्मा का परमात्मा, वो सर्वशक्तिवान है, तार जोड़िए करंट आएगा, और फिर वो शक्ति कैसे अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाना है, इनर पावर को स्ट्रेंथ करना। और ये देखता था एग्जैक्टली 3:59 में ये फिनिशिंग लाइन को टच कर रहा है, और वो बार बार देखता था, इतना क्लियरली देखता था, इतना स्ट्रांगली देखता था कि इट वॉज सो स्ट्रांग दैट हिज बॉडी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट। सोचता इधर था, काम इधर होता था, और जब उसने ये 3:59 में कंप्लीट किया, मजे की बात ये नहीं थी कि व्हाट रॉजर बैनिस्टर डिड, कमाल की बात ये थी कि दूसरे वर्ष 100 धावकों ने कंप्लीट कर लिया। उसके तीसरे वर्ष मतलब द सेकेंड सब्सिक्वेंट ईयर 300 धावक एक मील को 4 मिनट के अंदर दौड़ना शुरू कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि जब इस मन को पता चलता है ना कि आप कर सकते हो, इसका मतलब मैं भी कर सकता हूं। और अगर हमको ये लगता है कि कोई कर ही नहीं सकता है, तो मतलब कोई भी नहीं कर सकता, मतलब हम भी क्यों करें। और यही मान्यता को लेकर के शायद आप यहां आए। गुस्सा तो सब करते हैं, गुस्से के बिना तो काम ही नहीं चलता है। यहां से थोड़ा सा शांति की शक्ति में वो ताकत है। आज है ना 25 अगस्त, हमारे ब्रह्मा कुमारीज के प्रकाशमणि दादी, आज से 12 वर्ष पहले उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। 1969 पे जब ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर छोड़ा, उसके बाद से लेकर उन्होंने इस संस्था को, एक महिला ने इस संस्था को यहां तक लेकर आए। आपको ये इंस्पिरेशनल लीडरशिप अगर जानना है, और वो दादी ने कभी किसी को नहीं डांटा, इतना प्यार, इतनी शांति, इतना आनंद। अगर इतनी बड़ी संस्था आज भी आपका ये ज्ञान सरोवर, आप शांति बन जाएंगे तो वहां तो आपको सब सब बड़ा बड़ा दिखेगा। वहां का सोलर पावर प्रोजेक्ट में जाना, आईआईटी के बच्चे वहां के सीखते हैं कि कैसे सोलर जनरेशन से हमारा पूरा कैंपस हम सिर्फ सौर ऊर्जा से चलाते हैं, हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। आप जाना हमारे किचन में और देखना कि खाना 7-35 किलो खाना 7 मिनट में पक जाता है, एंड सब रिन्यूएबल रिसोर्सेस। हमारा नीचे का हॉल देखना, बड़ा सा, करीब करीब 20,000 लोग उसमें बैठ सकते हैं। इट्स अ आर्किटेक्चरल मार्वल। आप इस कैंपस में हैं, जब हमको ये कैंपस चन्ना रेड्डी साहब ने दिया था ना, उन्होंने एक कंडीशन रखा था कि यहां का टोपोग्राफी को आप चेंज नहीं कर सकते, यहां की धरती को आप सपाट करो, सब तोड़ो और फिर बिल्डिंग बना दो। आप जिस जिस कमरे में होंगे, किसी कमरे में तो पत्थर भी है, कभी इधर से जाओ, ऐसा सीढ़ी चढ़ो, ऐसा सीढ़ी चढ़ो, आपको लगता होगा नहीं कैसे कैसे बनाया है। और इतने सारे आर्किटेक्ट्स को दिखाया कि यहां हमें कैंपस बनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा यह नहीं बना सकते आप, अरे आपका प्लेन होना चाहिए ना बिल्डिंग खड़ा करने के लिए। और आपको ये वाला भाषण आपके कमरे में भी सुनाई दे देगा चाहिए तो, यहां का वायर वहां तक कनेक्टेड है लेकिन आपको एक वायर बाहर दिखती नहीं है। कौन सा कमाल है ये? वो कमाल है जब हम अपनी आंतरिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा देर प्रैक्टिस करें, 5 मिनट, हे मन तुम्हें कहीं नहीं जाना है, अपनी आंतरिक शक्तियों का चिंतन मनन। जैसे रॉजर बैनिस्टर अगर शरीर से वो सब कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। जब मैं पहली बार कश्मीर में गया सेवा करने के लिए, आज से काफी वर्ष पहले, एक फोर्स है किलो फोर्स, उसमें हम कार्यक्रम करने गए, कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। वहां के सीईओ साहब ने कहा, गिरीश भाई आपने हमारी सेवा की, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। मैंने कहा, सर कश्मीर में आया हूं, घूमूंगा नहीं तो। तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है, आपको क्या देखना पसंद है। मैंने कहा, सर मैंने जीवन में बर्फ नहीं देखी आज तक, स्नो। उन्होंने कहा ठीक है। दो ऑफिसर को कहा इनको घुमा के लेकर आओ। हम गए ऊपर काफी हाइट में, 17,000 फीट में, जहां सिर्फ बर्फ की चद्दर थी, व्हाइट व्हाइट व्हाइट, एक पेड़ नहीं, उस हाइट में पेड़ भी नहीं थे। और जब मैं वहां पहुंचा, मेरा जी ललचा गया, ऐसा दृश्य मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था। मैं तुरंत गाड़ी से कूदा, जैसे छोटा बच्चा लोट पोट करके खेलता है ना, वैसे ही मैं बर्फ में खेलने लगा। मैं अकेला ही था, इतना मस्ती किया मैंने बर्फ के साथ। जब मेरा जी भर गया तो मैं सोचा भी चलो वापस। जब पीछे मुड़ के देखा तो मुझे वो आर्मर्ड व्हीकल दिख ही नहीं रही थी जो आर्मी की थी। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं आया कहां से, वहां कोई ऐसा आइडेंटिफाई करने के लिए सब जगह मेरे ही कदम थे और मैं कंफ्यूज हो गया, मैं यहां से आया कि यहां से आया कि यहां। अचानक मेरे सिर में दर्द होता है और फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ। जब मुझे होश आया, कितने घंटे के बाद होश आया पता नहीं, जब मुझे होश आया तो मुझे ठंड लगने लगी बड़ी जोर से, मेरे हाथ पांव कांपने लगे, मेरे पूरे शरीर में दर्द मुझे महसूस होने लगा, मेरे आंखों के सामने अंधेरा और मैं हाथ पांव नहीं हिला पा रहा, मैं चिल्लाने लगा घबरा करके, बचाओ बचाओ मैं कहां पर हूं, वेयर एम आई। अचानक मैं महसूस करता हूं कि मेरे सिर के पीछे किसी ने हाथ रखा, मैंने कहा प्लीज हेल्प मी वेयर एम आई, तो किसी ने मेरे आंखों से पट्टी खोली और जो दृश्य मैंने देखा, माई गॉड आई हैड अ शॉक ऑफ माई लाइफ। मैंने देखा यहां एक आतंकवादी AK-47 लेके खड़ा है, यहां एक और आतंकवादी AK-56 लेके खड़ा है, पीछे से एक आतंकवादी तलवार मेरे यहां पे रखा, एक कैमरा सामने, और मेरे शरीर में कपड़े नहीं है सब जगह से, मतलब उन्होंने मेरी अच्छी धुलाई की, मेरा हाथ पांव कुर्सी में बांध के रखा, इसीलिए मुझे इतनी ठंडी लग रही थी। सवाल पूछूं दोस्तों, जवाब दीजिएगा, उस वक्त गिरीश भाई को पसीना आएगा या नहीं? जोर से बोलिए। आपको मेरे पसीने छोड़ने में इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? आपको मेरे बारे में ज्यादा जानकारी है, ये तो पसीना तो जरूर छोड़ेगा। सवाल पूछूं दोस्तों, साइंस के बारे में बता रहा हूं, पसीना आने के लिए हवा में नमी होना चाहिए, पसीना आने के लिए टेम्परेचर मिनिमम 30 डिग्री होना चाहिए, पसीना आने के लिए आपने और मैंने खूब मेहनत, वॉकिंग जॉगिंग काम करना चाहिए। ये तो भैया तुम्हारा हाथ कुर्सी में पांव बिठा दिया, आपको -15 डिग्री टेम्परेचर है, पसीना कैसे आया? क्या बात है, टू गुड। ये डर इतना पावरफुल है, डर किडनी को नहीं होता है, घुटनों को नहीं होता है, सारा मन का खेल है। अब ये मनोबल देखो, बल है ये, डरिए स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट करिए, टेम्परेचर -15 में भी पसीना कौन छुड़वा सकता है ये डर। तो क्या विपरीत परिस्थितियों में शांति और सुख हार्ट अटैक से आपको नहीं बचा सकती है? विपरीत परिस्थितियों में आपको वहां से युक्ति युक्त नहीं निकलवा सकती है? अगर उल्टा हो सकता है तो फिर उल्टा भी तो हो सकता है, बट यस और नो, बट इसको हमने टेम नहीं किया, इसको हमने प्यार से। आज से मैंने ना वो क्यूट डॉगी के साथ पता है क्या किया था, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, और ऑफिस से आने के बाद 10 मिनट उसके साथ मैं खेलता था, उसको प्यार करता था, उसको खिलाता था, उसको नहलाता था, उसको कडल करता था, उसके साथ मस्ती करता था। ऑफिस जाने के पहले 10 मिनट, ऑफिस से आने के बाद 10 मिनट, और रात को सोने के पहले 10 मिनट। इतना किया, 6 महीने में ये डॉगी मेरे हर इशारों को फॉलो करता था। मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस मन को सुबह उठते साथ 10 मिनट, रात को सोने के पहले 10 मिनट, और दिन में अगर आप नुमा शाम संध्या समय अगर आप पूजा पाठ कुछ करते हैं उस समय नहा धोकर फ्रेश होकर भगवान के मंदिर के साथ, जहां आपके घर में अगर कोई पूजा स्थल हो उसके सामने बैठ के 10 मिनट इस मन को थोड़ा प्यार करिए, थोड़ी पालना दीजिए, थोड़ा उसको कडल करिए, उसके साथ खेलिए, उसको मित्र बनाइए, उसको अच्छी अच्छी बातें सुनाइए। 6 महीना बहुत दूर है, मैं आपको 7 दिन का रिजल्ट बताऊं, हमारे यहां नीचे मैंने कल भी आपको बताया था कोरोनरी आर्टरी डिजीज का प्रोजेक्ट चलता है, 7 दिन के अंदर मेडिटेशन इस मन के साथ बिठाकर प्यार करने से हमारे कोरोनरी आर्टरी डिजीज खुल जाते हैं। ये जादू नहीं है, कमाल आपके अंदर एक बहुत बड़ा शक्ति बैठा हुआ है, बस इस शक्ति को थोड़ा सा पॉलिश करें, इसको इस्तेमाल करें, कितना वंडरफुल हो सकता है। ठीक है, मेडिटेशन करना माना स्वयं को प्यार करना। मुझे पता है प्रॉब्लम है, मुझे पता है मेरे में थोड़ा गुस्सा भी है, उसको भूलो, अभी भूलो मेरे अंदर शक्ति है। जैसा सोचेंगे जैसा महसूस करेंगे वैसा हो जाएगा। मैंने डर के विचार किया, डरा और स्वेट ग्लैंड्स ने काम कर दिया, इतना सिंपल है। ठीक है, हाँ जी, क्या वहां से निकले कैसे? जीवन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है, हम सिर्फ रिजल्ट को देखते हैं, प्रोसेस को नहीं देखते। वहां से निकलना इम्पोर्टेंट नहीं था, उस परिस्थिति में कितना देर ये कर सकते हो वो इम्पोर्टेंट था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम हर चीज को ना रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, प्रोसेस। जीवन इज नॉट अ रिजल्ट, लाइफ इज अ प्रोसेस। ठीक है, लास्ट बात आपको बताता हूं। ये जो आत्मा है ना, ये सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता का बना हुआ है। ठीक है, यही है मेरे अंदर और ये सत्य है। ठीक है, बस होमवर्क, कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, अभी जाते जाते मैं आपको दूसरा होमवर्क देता हूं। मुझे ना फ्रूट जूसेस, फ्रूट सलाड्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने हमारे सेंटर में, ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाकर कहा, दीदी मुझे एक ग्लास गन्ने का जूस चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। और फिर हम गए गन्ने वाले के पास, एक भाई मुझे लेकर गए और गन्ने वाले से कहा, भाई हमको दो ग्लास गन्ने का जूस चाहिए। उन्होंने कहा जी सर। उसने गन्ने को छीला और उसको उसको क्रशिंग मशीन में डाला। जब गन्ना क्रश होगा तो उसमें से क्या निकलेगा, क्या होगा टेस्ट? स्वीट। क्यों होगा गन्ना स्वीट? क्या बात है, हाँ मीठा है, सत्य है। वो मीठा है क्योंकि ऐसा ही बना है। हिंदू धर्म ने गन्ने को मीठा नहीं बनाया, आज तक गन्ना मीठा को लेकर कोई महायुद्ध नहीं छिड़ा, क्योंकि सत्य है, किसी का पेटेंट और कॉपीराइट नहीं है। यही तो ब्यूटी है, ये आत्मा जो है ना, ये भी सत्य ही है, किसी को कॉपीराइट और पेटेंट नहीं है, और उसके अंदर सुख शांति आनंद ये भी बाय डिफॉल्ट ही है। अब गन्ने वाले ने पहला राउंड क्रश किया, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, लास्ट क्रशिंग में एक बूंद ड्रॉप गन्ने का जूस बचा है, करके वो गिरती है। लास्ट गन्ने का जूस कड़वा होगा कि मीठा होगा? मीठा ही होगा। बस इतना ही अनुरोध है, ठीक है, अगले 24 घंटे तक गन्ना बन के रहिए। हमारी जितने भी यहां बहुएं बैठी हैं, घर में जाना, इनकी सासू मां इनके सर को ऐसा पकड़ती है, धड़ को ऐसा पकड़ती है और ऐसे निचोड़ती है, तो आपके मुख से क्या निकलना चाहिए? मम्मी घर जाती है, बच्चे को कहती है, बेटा प्लीज टीवी बंद करके पढ़ ले। एक बार, दो बार, तीन बार, आधा घंटे के बाद मम्मी मिर्ची बन जाती है। 35वें मिनट में मम्मा नमक बन जाती है। 40वें मिनट में मम्मा नींबू बन जाती है। 45वें मिनट में मम्मा करेला बन जाती है। सवाल पूछूं, गन्ना सदा मीठा है, मिर्ची सदा तीखी है, नींबू सदा खट्टा है, नमक सदा खारा है, करेला सदा कड़वा है, हे इंसान, कभी इधर कभी उधर कभी, हर एक वस्तु का नेचुरल कंडीशन में अपना मूलभूत गुण स्वभाव को वो छोड़ता नहीं है। इस संसार का सबसे बुद्धिजीवी मनुष्य प्राणी, और हम बिन पेंदी के लोटे की तरह मिनट मिनट में अपना स्वभाव चेंज करते हैं। और ये क्यों करना जरूरी है? अगर आप गुस्सा करते हैं तो आज थोड़ा चेक करना। लास्ट बात बताता हूं, फिर एक मिनट मेडिटेशन। एक गांव में दो पड़ोसी, वैसे तो बहुत घर थे, तो नजदीक नजदीक दो घर था। ये पड़ोसी अपने घर के आंगन का झाड़ू लगाता था, टोकरी में कचरा डालता था और वो टोकरी उठा करके इस पड़ोसी के घर के सामने डाल देता था, और ये पड़ोसी बड़े प्यार से उसका झाड़ू लगाता था। उसको चेहरे में भी ये फर्क नहीं पड़ता था कि तू अपना घर का कचरा मेरे पास क्यों डाल, कचरा प्रकृति डाले, पेड़ पत्ते डाले, तू डाले, मेरा काम तो झाड़ू लगाने का, वो झाड़ू लगा देता। दूसरा दिन भी कचरा, तीसरा दिन भी, दसवां दिन, पचासवां दिन, 6 महीने कचरा डालता था और ये पड़ोसी बड़े प्यार से झाड़ू साफ कर लेता था। जब 6 महीना बीत जाता है, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का सीजन आता है, तो इस पड़ोसी के घर के आंगन में बड़ा सा आम का वृक्ष, उसमें बड़े लसदार बड़े बड़े आम आते हैं। जब वो एकदम पक जाते हैं तो ये पड़ोसी वो सब मीठे आम को तोड़ के टोकरी में भर के सुबह सुबह इस पड़ोसी के उठने के पहले इसके घर के दरवाजे के सामने रख देता है। ये पड़ोसी जैसे ही दरवाजा खोलता है, मीठे आम को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होता है और इसको पता चल जाता है इसी ने रखे हैं क्योंकि कल मैंने देखा था ये आम तोड़ रहा था। उसको बड़ी आत्मग्लानी होती है, उसको बड़ा बुरा लगता है, मैंने क्या सोचा इस व्यक्ति के बारे में, 6 महीना मैंने इसके घर के सामने कचरा डाला और ये मेरे घर के सामने आम रख रहा है, कितने सज्जन पुरुष है। तुरंत उसके पास जाते, दरवाजा खटखटाते और जैसे ही वो व्यक्ति आता है वो कहता है भाई साहब मैंने आपको बहुत गलत समझा, मैं आपके चरणों में सिर रखकर माफी मांगूंगा तो भी कम है, आप इतने महान हो, इतने देवत्व है आपके अंदर, इतने श्रेष्ठ विचारधारा, आपकी बुद्धि कितनी विशाल है, आपको मैंने समझने में बहुत गलती की, मैंने 6 महीना जो आपको तंग किया परेशान किया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं कैसे इसकी भरपाई करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप बहुत सज्जन पुरुष हैं। तो पता ही ये पड़ोसी क्या कहता है, सज्जन वज्जन मैं नहीं हूं भैया, महान वहान भी नहीं हूं। तो ये पड़ोसी कहता है अरे कोई किसी के घर में कचरा डाले और वो व्यक्ति आपको 6 महीने के बाद आम दे तो सज्जनता की ही निशानी है, महानता की निशानी है। तो ये पड़ोसी कहता मुझे नहीं पता महानता है या नहीं। तो इसने कहा अगर आप महान नहीं है, आपकी बुद्धि इतनी विशाल नहीं है तो आपने मेरे घर के सामने आम क्यों रखा और कैसे रखा। तो ये पड़ोसी कहता बहुत सिंपल बात है भैया। बोला क्या सिंपल बात है। ये पड़ोसी कहता है जिसके पास जो होगा वो ही देगा ना। अब आप चेक करिए आप अपने बच्चों को क्या देते हैं, पत्नी को। प्लीज एक छोटा सा निवेदन है, छोटी सी दुनिया, छोटा सा जीवन, आप हस्बैंड वाइफ माता पिता बच्चे बड़े सम्मान से छोड़ दो ना उनकी गलतियों को, क्या करेंगे इनकी गलतियां देखकर चिल्ला करके, है कमी कमजोरी इग्नोर करिए, आप प्यार दीजिए, आप सम्मान, कितना प्यार करूं, यही प्रॉब्लम है ठीक है। कितना प्यार करूं अगर प्रॉब्लम है तो परमात्मा वो सागर है शांति का, सुख का, आनंद का, कनेक्ट करिए, भरते जाइए भरते जाइए, ऑटोमेटिकली भरेगा, मांगने की भी जरूरत नहीं है, लेते जाइए देते जाइए, लेते जाइए देते जाइए, यही तो जीवन में महानता का गुण। ठीक है, गन्ना बनेंगे, चलिए ताली बजाइए जोर से, बहुत अच्छा। 1 मिनट मेडिटेशन करें, हल्के होकर के बैठे, सीधे बैठे, आत्मचिंतन करें, अपने आप को देखें, अपने जीवन को देखें, आज तक के इस जीवन में मैंने क्या दिया दूसरों को, अभिमानवश अहंकारवश अपने पोजीशन के पावरवश, दुनिया वालों की तो बात छोड़ दीजिए, शायद मैंने अपनों को गलत बातें दी और आज इसका बोध मुझे हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी गलतियां मुझसे अवश्य हुई हैं, लेकिन आज मुझे सत्य ज्ञान हुआ कि मैं आत्मा शक्तिशाली हूं, प्रेम स्वरूप हूं, मुझ आत्मा में इतनी शक्तियां हैं जो मैं असंभव को भी संभव कर सकता हूं, मेरे में आज वो ताकत वो आंतरिक शक्तियां हैं जिसे मैं आने वाले जीवन में अपनों के लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं सबको सिर्फ प्यार खुशी आनंद और शक्ति दूंगा क्योंकि यही है मेरे पास। सामने वाला कितना भी कचरा कितने लंबे समय तक भी दे, मैं उन्हें प्यार खुशी सम्मान अपने जीवन काल के अंत समय तक दूंगा क्योंकि मैं ईश्वर की सुंदर रचना हूं, ये महान और श्रेष्ठ कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है। जब मृत्यु शैया पर मैं लेटा रहूंगा उस वक्त मैं अपने जीवन पर बड़ा नाज करूंगा कि मैंने ऐसी कोई गलती की ही नहीं, जो मेरे पास था वो सब मैंने दिया। बहुत आसानी से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बना सकते हैं। मैं ओरिजिनली में गन्ने के जैसा अति मीठा हूं, भगवान का मीठा बच्चा हूं, उसका लाडला हूं, उसके दिल में बैठा हूं, उसका नूरे रतन हूं। आज के बाद हर व्यक्ति जो भी मुझसे मिले उसको महसूस हो कि आप बहुत श्रेष्ठ हैं, महान हैं, अच्छे हैं, आपके पास अच्छाई के अलावा और देने को कुछ भी नहीं। कितना आसान है ये जीवन, कितना अच्छा है ये जीवन। इसे मैं अपने आंतरिक शक्तियों से ऐसा सुंदर, लाभप्रद बनाऊंगा। अगर आपने आंखें बंद की हों तो धीरे से खोलें, बहुत प्यार से कहें ओम शांति। दोनों हाथ को अच्छी तरह रब करें, पूरे चेहरे पे लगाएं। गुड न्यूज, फिर से फेयर एंड लवली लगाया, लेकिन गन्ने के फ्लेवर वाला, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ओम शांति।